श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं जो गजेंद्र कहते हैं सर्वेंद्रिय गुण दृष्ट सभी शब्द चौथी विभक्ति में है एक वचन में इसको संप्रदान कहते हैं जिसको प्रणाम किया जाता है उसके लिए चौथी विभक्ति प्रयुक्त होती है संस्कृत के नियम है ये जैसे नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले प्रभु पादाय चौथी विभक्ति में एक वचन है तो इसी तरह से सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सभी इंद्रियों के गुणों के आप दृष्टा हैं मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान ने हम सबको इंद्रियां दिया है चूंकि हम संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं इसीलिए भगवान इंद्रियां देते हैं पांच ज्ञान इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां और एक मन मन सहित ये ग्यारह इंद्रियां हैं सबको मिली हैं इन इंद्रियों के विषय हैं जैसे ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं शब्द रूप रस गंध विविध प्रकार की चीजें आँखों का विषय है रूप देखना जिह्वा का विषय है रस लेना हम विविध प्रकार की चीजें खाते हैं विविध प्रकार का स्वाद और विविध शब्द सुनते हैं अनेक प्रकार का स्पर्श होता रहता है ये त्वगिंद्रिय का विषय है इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ही गुण कहा गया है तो सर्वेंद्रिय गुण दृष्ट सभी इंद्रियों के जो विषय हैं आप इसके दृष्टा हैं दृष्टा से मतलब यह अर्थ है कि आप ही सबको विषय देते हैं रूप देखने को शब्द सुनने को कोई वस्तु स्पर्श करने को सूंघने को सब आप ही देते हैं जब तक भगवान की अनुमति नहीं होगी सैंक्शन नहीं होगा तब तक कोई वस्तु किसी के इंद्रिय का विषय नहीं बन सकती है इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके भावार्थ में कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति सब आते हैं यदि भगवान इंद्रियों में शक्ति न दें तो इंद्रियां कोई भी विषय ग्रहण नहीं कर सकती हैं सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे आंखें रहेगी आंख रहेगी कान रहेगा, जीवा रहेगी, लेकिन भगवान अगर हृदय में न रहे तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। सारा फंक्शन बंद हो जाएगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं ये पावर रहता है, बिजली रहती है तो पंखे काम करते हैं, कोई मशीन काम करती है, लेकिन बिजली ऑफ हो जाने पर कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन काम नहीं करती है। तो सभी जीवों के हृदय में भगवान हैं और वही परम पावर हैं, परम शक्ति हैं। तो वे देखने की सुनने की सब शक्ति देते हैं, तब उन वस्तुओं का अनुभव होता है। भगवान जब अनुभव कराना चाहते हैं तब अनुभव होता है। यदि भगवान न चाहे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इस संसार में देखा जाता है कि अगर कोई इंद्रिय अगर खराब हो जाती है तो कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। जो मूल चीज है ईश्वर की उपस्थिति, भगवान की सहायता के बिना हम न कुछ देख सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं, न कुछ खा सकते हैं। कुछ भी खाएंगे तो उसमें स्वाद का अनुभव नहीं होगा। स्वाद का अनुभव भगवान के कारण होता है। वही स्वाद का अनुभव कराते हैं। जीवन के प्रत्येक स्थिति में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। खाते समय, पीते समय, अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो उस समय भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो रसो हम अपसु कौन्तेया। हे कुंती नंदन, जल में जो रस है, रस का अर्थ जो तृप्त करने की शक्ति है, वो मैं हूँ। आदमी जब प्यास से व्याकुल हो जाता है तो पानी पी करके कितनी तृप्ति का अनुभव करता है। तो पानी में जो तृप्त करने की शक्ति है वो भगवान कृष्ण हैं, रस हैं। अपसु, सब प्रकार के जलों में मैं रस हूँ। पर सब कुछ रहते हुए यदि किसी के सामने बहुत रूप प्रस्तुत किया जाए और आँखों की वृत्ति काम नहीं करे, तब तो कुछ भी देख नहीं पाएगा। एक समय मैं कथा कह रहा था, कथा के लिए बैठा था, एक घंटे तक कथा हुई, लेकिन एक बहरा व्यक्ति आ करके बैठा था तो एक घंटे के बाद जब क्लास खत्म हो गया तो वो कहा कि आप लोग चुपचाप बैठे क्यों हैं, कुछ कही है तो सब लोग हंसने लगे कि एक घंटे तक कथा हुई और ये कहते हैं चुपचाप बैठे रहे। और इस माइक लगा था, लाउड स्पीकर लगा था, फिर भी कान उसको ग्रहण नहीं कर पाया। कानों के आकार में अंतर नहीं था, आकार वही था, कान में छेद है वो थे, लेकिन जो शब्द को पकड़ने की वृत्ति थी वो भीतर से डिस्कनेक्ट था। तो किसी भी उपाय से व्यक्ति नहीं सुन पाता है। तो इस तरह से सृष्टि में अनंत जीव हैं और सबको भगवान ने सुनने की शक्ति दिया है और वे चाहते हैं तब हम सुन पाते हैं। इसी तरह खाने की शक्ति है, रस ग्रहण करने की क्षमता। नहीं तो बहुत पदार्थ रख दिया जाए और रस ग्रहण करने की शक्ति नहीं दी जाए भगवान द्वारा, जो सब कुछ मिट्टी जैसा लगेगा। चाहे गुलाब जामुन खाए या जलेबी खाए, लेकिन सब मिट्टी जैसा, क्योंकि रस ग्रहण करने की क्षमता भगवान द्वारा नहीं दी जा रही है। इस शरीर में भी भगवान ने जगह जगह पावर के स्विच बनाए हैं। डॉक्टर लोग कहा करते हैं, कई बार हमारे साथ वो घटना है कि आपके ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसीलिए हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ब्रेन भी कुछ नहीं है, असली है भगवान, उनसे ब्रेन काम करता है और ब्रेन से और अंग काम करते हैं। किसी वस्तु को याद करने की क्षमता भी वही देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग भगवान को भूलना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान सभी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं, वो हृदय में ही है, देखते हैं कि ये व्यक्ति हमको भुलाना चाहता है, तो भगवान जन्म 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 में भुलाए ही रखते हैं। ठीक है, याद नहीं करना चाहता है तो भूले रहो। ओम अज्ञान तिमिराम धस्य, सारा जगत अज्ञान के अंधकार में भूला रहता है। वे स्वयं कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, मत्तः मुझसे ही अपोहनम, अपोहनम का अर्थ है विस्मृति, हमसे ही विस्मृति आती है। यद्यपि वे सबके हृदय में हैं और तैयार हैं हमेशा कि मैं जीव को ज्ञान दूं, लेकिन वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है, भूलना चाहता है, थोड़ी बहुत याद है वो भी भूलना चाहता है, तो भगवान सुविधा देते हैं। ठीक है, सोए रहो, भूले रहो, पशु योनि में पक्षी जोनी में और तृण पतंग सभी जोनियों में जीव भगवान को भूला रहता है, मनुष्य देह में भी भूला हुआ है, अधिकांश लोग तो भूले ही हुए हैं। कभी कभी चर्चा चलती है भगवान की का भजन करना चाहिए, कहते हैं भगवान कौन है, हृदय में ही हैं भगवान, फिर भी पूछते हैं भगवान कौन है, भगवान सुन करके हंसते होंगे, भगवान कोई नहीं है, और भगवान यदि है भी तो उसका कोई रूप नहीं है, क्या नाम लें, उसका कोई नाम ही नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो है भी रूप वाला या नाम वाला तो कितना दिन रहेगा, अब तो वो खत्म हो गया होगा, अब तो यदि ईश्वर है भी तो बस निराकार, रूप वाले तो सब चले गए। तो ये सब विस्मृति है ना, और आश्चर्य है कि विस्मृति में सारा जगत डूबा हुआ है, फिर भी भगवान के विषय में कोई न कोई फिलॉसफी बोलता रहता है। तो ये भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं, जीव चाहता है कि मैं भूलूं, ईश्वर हमारे जीवन में दखल न दे, हमको फ्री जीने दो, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं यदि हम भगवान को याद करेंगे तो बहुत डर लगेगा और डर के मारे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए आँख बंद कर लेना ही ठीक है, भगवान को हमारे जीवन में मत आने दो, और यदि भगवान है भी तो क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या हमको जिला खिला रहा है, इस तरह के प्रवाद संसार में चलते हैं। भगवान ही सभी इंद्रियों में शक्ति देते हैं, विविध प्रकार के जो वाद विवाद होते हैं वो भी सब भगवान से ही आते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, इंद्रियों में जो प्रत्यय है यह भगवान का ज्ञापक है, हेतु का अर्थ है ज्ञापक, ज्ञापक मतलब बताने वाला। इंद्रियों की विविध क्रियाएं ये बताती हैं कि अवश्य कोई व्यक्ति है शरीर में ही जो इन इंद्रियों को शक्ति दे रहा है। ये सभी प्रत्यय, प्रत्यय मतलब देखना सुनना इत्यादि, सब सिद्ध करते हैं कि भगवान हैं, कोई जीवन शक्ति है, और सबको ये शक्ति दे रहा है। प्रत्यय, पैर में प्रत्यय क्या है, पैर का प्रत्यय है चलना, हाथ का प्रत्यय है कुछ कर्म करना, चाहे हम गाड़ी चलाएं या अन्य कोई काम, कोई शिल्प का काम करें या कुछ भी करें, इसमें हाथ की जरूरत है। हाथ में काम करने की शक्ति है। ये प्रत्यय सब भगवान से प्राप्त हैं और भगवान की सूचना दे रहे हैं। इसको यदि समझने की थोड़ी भी बुद्धि को कोई रखता है तो समझ सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मर जाते हैं तो क्या हो जाता है? भगवान की शक्ति, भगवान का अंश, जीवात्मा यह शरीर छोड़कर चला जाता है और भगवान भी चले जाते हैं। जब ही जीवात्मा शरीर छोड़ता है उसके साथ भगवान भी चले जाते हैं, जीव का संग नहीं छोड़ते हैं। तो मरने का मतलब है कि माइनस भगवान और जीव और शरीर, शरीर है लेकिन दो चीज नहीं है, जीवात्मा नहीं है और परमात्मा नहीं है, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु हो जाने पर शरीर के सारे प्रत्यय बंद हो जाते हैं, देखना सुनना खाना चलना काम करना स्पर्श का अनुभव करना सब बंद हो जाता है। कितना भी अच्छा सुगंधित फूल किसी मरे हुए व्यक्ति के पास ले जाकर के पूछिए कि इसकी गंध कैसी है तो कुछ बता नहीं पाएगा। अब तो सूंघने का प्रत्यय सब खत्म हुआ है। तो सर्व प्रत्यय है तबे, सब प्रकार का प्रत्यय, इंद्रियों की अलग अलग क्षमता समाप्त हो जाती है। मरा हुआ व्यक्ति न कुछ सुनता है और न तो देखता है। अगर उसके पास आप कोई चाकू या कोई चुभने वाले चीज आँख के पास ले जाइए तो वो प्रतिकार नहीं करेगा। जब तक जीवित हैं तब तक आँख कुछ भी गड़ने नहीं देती है। अगर कुछ आँख के पास जाता है तो पहले पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये पलक गिरने की क्षमता भी भगवान देते हैं। आँख में देखने की शक्ति तो भगवान देते ही हैं, शरीर में प्रत्येक क्रिया को वही चालू करते हैं और उनके अंश जीवात्मा के जाते ही यह शरीर जड़ है, ये लंप ऑफ मैटर, यह पदार्थ रह जाता है। और फिर इसको हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या चिता पर जला देते हैं। पर आत्मा जो जीवात्मा है वो फिर दूसरे शरीर में जाता है। शरीरम जद अवापनोति जच्च अप्युत्क्रामति ईश्वर। शरीर छोड़ देता है जीव, लेकिन चूंकि उसके साथ भगवान हैं इसलिए वो मन और इंद्रियों के साथ ही जाता है दूसरे शरीर में, पर उसको याद नहीं आती है, तो भगवान उसे दूसरे जन्म में भी ये सब शक्ति देते हैं, स्मृति देते हैं, खाने की, पीने की, बोलने की, कर्म करने की क्षमता से। जन्म जन्म में भगवान साथी हैं, ये कितना बड़ा ज्ञान है कि ऐसे प्रभु को हम भुला देते हैं जो प्रभु हमको कभी नहीं भूलते हैं। जो हमको कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, एक जन्म में ही नहीं जन्मांतर में सब समय, और वैसे प्रभु के विषय में हम संदेह करते हैं, वो हैं कि नहीं हैं, या हैं तो कैसे हैं, कितने लोग तो अपने को नास्तिक कहने में गौरव मानते हैं अपने, पर नास्तिकों को भी भगवान ही सब सुविधा और शक्ति देते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। आप अखिल कारण हैं, अखिल कारण का अर्थ है सबका मूल, सबका कारण। जितने जीव हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं सबके आप मूल कारण हैं। नमो नमस्ते अखिल कारण आया और स्वयं निष्कारण है। हे प्रभु आपका कोई कारण नहीं। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, और आप अद्भुत कारण है, सब कुछ आपसे उत्पन्न हुआ है लेकिन फिर भी आप अक्षुण रहते हैं, आप अद्भुत कारण हैं। भगवान से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, सारी वस्तुएं, सारे प्राणी सभी, लेकिन भगवान पहले से जैसे हैं वैसे ही अभी भी हैं, और ये सभी प्राणी पदार्थ एक दिन भगवान में लीन हो जाएंगे, फिर भी भगवान वैसे ही रहेंगे, भगवान को कोई अपच नहीं होगी। सारे जगत को खा करके भगवान कोई ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, और सारा जगत उनसे निकलता है तो वो कोई क्षीण नहीं होते हैं। ये अद्भुत कारण है। और सृष्टि भी अद्भुत ढंग से करते हैं, और गर्भ समुद्र में भगवान सोए रहते हैं शेष नाग की सज्जा पर, और फिर भी सृष्टि होती रहती है। उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी बहुत सृष्टि में सहयोग करते हैं, उनके पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी, कश्यप जी अनेक प्रकार की सृष्टि किए, उनसे ही सब पशु उत्पन्न हुए हैं। और पक्षी भगवान के वाहन गरुण जी उनके पुत्र हैं, और माता विनता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। तो अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं और गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस तरह उनकी पत्नियों से कई प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए, और माता अदिति से सभी देवता उत्पन्न हुए। भगवान तो अद्भुत कारण हैं ही, उनके द्वारा रचे हुए ब्रह्मा जी, कश्यप जी, ये सब भी अद्भुत सृष्टि करते हैं। भगवान अद्भुत कारण है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशव तुआ जगत विचित्र, हे कृष्ण आपका बनाया हुआ यह जगत विचित्र है। इतना विशाल समुद्र, अनेक विचित्र प्राणी इस संसार में हैं। जो भगवान की इस विचित्रता को देखकर हमें क्या करना है, हमें बारंबार प्रणाम करना है, नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। जो स्वयं निष्कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है और वे अद्भुत कारण है। उसके बाद कैसे है श्लोक, नहीं इसी श्लोक में आधा कैसे, सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। तो यदि कोई पूछ सकता है कि भगवान इस तरह से अद्भुत कारण हैं जगत के और उनका कोई कारण नहीं है, तो इस विषय में आप प्रमाण क्या है आपके पास। यदि गजेंद्र से ही कोई पूछ दे कैसे आप इस बात को कह रहे हैं, तब कहते हैं सर्वामनाय महारणवाय। इसके प्रमाण है वेद, अमनाय कहते हैं वेद को, और वेदानुगत सभी ग्रंथ है, उनको भगवान ने बहुवचन में कहा वेदश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। इसके प्रमाण है वेद, वेद पुराण, वेद उपनिषद, पुराण महाभारत, रामायण, ये सब वैदिक ग्रंथ हैं। और भगवान एक महासमुद्र की तरह हैं, जैसे सब ओर से नदियाँ सब ओर से स्रोत बह करके अंत में समुद्र में गिरते हैं, उसी तरह समस्त वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र उपनिषद पुराण इतिहास ये सब आपका इसी रूप में वर्णन करते हैं। सबका पर्यवसान आप में है। जो सबसे बड़े ये प्रमाण है, इस मानव जगत में मानव समाज में सबसे बड़ा दान भगवान का है कि सृष्टि करने के साथ भगवान ने वेद दिया है, वैदिक ग्रंथ दिया है। इनको पढ़ करके सुन करके हम समझ सकते हैं कि भगवान सब कुछ हैं और भगवान हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। इनको पढ़े बिना सुने बिना भगवान को नहीं समझा जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार चालू किए तो उन्होंने वैदिक ग्रंथ दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता यथावत ये दिया उन्होंने। क्योंकि इसके बिना, इन ग्रंथों के बिना भगवान का सत्य ज्ञान नहीं होगा। ये सभी ग्रंथ भगवान का प्रतिपादन करते हैं। जैसे सभी स्रोत सभी नदियाँ महारणों में गिरती हैं, तो आप में सभी ग्रंथों का पर्यवसान है। वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। वेद्य का अर्थ है जानने योग्य, सबका तात्पर्य। ये ग्रंथ इसीलिए हैं, ये क्या बताते हैं, ये मेरा ही वर्णन करते हैं। यदि भगवान से पूछा जाए कि आप कैसे कहते हैं कि ये मेरा ही वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं वेदांत कृत मैं ही वेद बनाया हूँ, वेद का निर्माता मैं हूँ और वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। वेद वित एवच अहम, मैं ही वेद को जानने वाला हूँ, मैं ही वेद का निर्माता हूँ और वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य तत्व है वो भी मैं हूँ। सर्वागमामनाय, सभी आगम और सभी आमनाय, मतलब जितने भी वेद और वेद के अनुगत ग्रंथ हैं सबका पर्यवसान भगवान कृष्ण में है। ये सब ग्रंथ पढ़कर के भी जो लोग ये कह देते हैं कि वेदों में भगवान कृष्ण का जिक्र नहीं है, वे अंधे हैं, वे कुछ भी नहीं जानते हैं। सर्वागमामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय, हे प्रभो हे जगन्नाथ, आप सभी वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, सभी वैदिक ग्रंथ आपका ही वर्णन करते हैं। अगर कहीं कुछ कोई देवता का वर्णन है तो सब मिला करके तो कृष्ण में ही उसका पर्यवसान है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जैसे सब नदियाँ अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से कोई कहीं भी किसी को भी प्रणाम कर रहा है तो सारे प्रणाम केशव के प्रति पहुँच जाते हैं। कहीं कोई प्रणाम कर रहा है, उसकी भावना भले दूसरी है कि मैं दूसरे को प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन सारे प्रणाम पहुँच जाते हैं कृष्ण के पास। क्योंकि सभी जीव उनसे उत्पन्न है, कोई नदी किसी दूसरे नदी में मिल जाती है लेकिन अंततः वह समुद्र में गिरती है, तो उसका पानी समुद्र में मिल जाता है। तो हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम श्री कृष्ण के प्रति चला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए तेज को हम प्रणाम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं तो व्यक्ति हुआ कैसे, तो भगवान की ही शक्ति है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। किसी विद्वान को, किसी नेता को या किसी सुंदर व्यक्ति को आप प्रणाम करते हैं या आदर करते हैं, वो सारा आदर भगवान के पास पहुंच जाता है। क्योंकि सबके वे कारण हैं, किसी में कोई विशेषता है तो कृष्ण की दी हुई है। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जित में हुआ, भगवान दसवें अध्याय में गीता के अपनी विभूतियाँ गिना रहे थे अर्जुन को, तो वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा जान करके क्या करोगे, बस इतना ही समझो जज्जद विभूति मत सत्वम, कोई भी व्यक्ति इस जगत में अगर विभूति मत है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, बड़े बड़े पद पर है या सुंदर है, तेजस्वी है, तो तत् तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। तो किसी को भी प्रतिभावान देखो, तेजस्वी देखो, सुंदर देखो, विद्वान देखो, प्रभावशाली देखो, तो उसको समझो मेरे अंश के अंश से उत्पन्न हुआ है, मेरे एक छोटे अंश से ही सब प्रकट हुए हैं। तत् तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम, भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं है, सब उन पर आश्रित हैं, उन्हीं के कारण टिके हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के कारण प्रतिभा है या सौंदर्य है या तेज है, तो उसी को गजेंद्र जी कह रहे हैं सर्वागमनाय महार्णवाय। समस्त शास्त्रों के, वैदिक ग्रंथों के आप पर्यवसान हैं, आप प्रतिपाद्य हैं, वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका ही वर्णन करते हैं। कोई ये भ्रम न करे कि कहीं कहीं गणपति जी का वर्णन है, कहीं पर भगवान सूर्य का वर्णन है, कहीं पर माता दुर्गा का वर्णन है, किसी में ब्रह्मा जी का वर्णन है, किसी में शंकर भगवान का वर्णन है, लेकिन ये सब आए कहाँ से, सब मिला करके भगवान कृष्ण का ही वर्णन है सब जगह सारे। उन प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। गजेंद्र कहते हैं नमोपवर्गाय परायणाय, हे प्रभु आप अपवर्ग हैं, इस पवर्ग से परे अपवर्ग, आप मोक्ष स्वरूप हैं, इसी कारण परायणाय परायणाम अयनाय नमः। आप जो इस जगत में कहीं भी जो सबसे उत्तम लोग हैं, उन्नत लोग हैं, ग्रेट सोल्स हैं, बड़े बड़े लोग, उन सबके आप ही आश्रय हैं, परायणाम अयनाय। इस संसार में हम लोग देखते हैं कुछ लोग किसी राजनेता की शरण लेते हैं, कोई देवता की शरण लेते हैं, कोई देवी की शरण लेते हैं, लेकिन ये समस्त देवता और देवी भगवान की शरण में है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। परायणाय पर अयण परायणाम अयन, अयन का अर्थ है आश्रय। तो आप पर लोगों के जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि आदि जो सबसे श्रेष्ठ है लोग हैं, उनके आश्रय आप हैं, आपको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। गुणा रणि छन्न चिदुष्म पाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय। नष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। सब में है नमस्करोमि, नमस्से, नमः। जिस श्लोक में नमः नहीं आया है, अन्वय बाद के श्लोक में या पहले के श्लोक में समझ लेना चाहिए। सभी वक्तव्य में, सभी वाक्य में गजेंद्र भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गुणा रणि छन्न चिदुष्म पाय, गुण का अर्थ है भौतिक पदार्थ। गुण रूपी अरणि, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि छिपा रहता है लेकिन उपाय करने से प्रकट होता है, उसी प्रकार आप भौतिक पदार्थों में छिपे रहते हैं। आपका उष्मपा, आप ज्ञानाग्नि, हे प्रभु आप पूर्ण चिन्मय रहते हैं। पूर्ण चिन्मय का अर्थ है पूर्ण स्पिरिचुअल, आप पूर्ण स्पिरिचुअल रहते हैं, सब में हैं, जैसे भगवान देह के भीतर हैं, हृदय में हैं, लेकिन उनका ज्ञानाग्नि ढका रहता है, छन्न रहता है। गुणा रणि छन्न चिदुष्म पाया, चिदुष्मा, चिदुष्मा कहते हैं स्पिरिचुअल उष्मा को, और उष्मा प पाती थी प, उष्मा को कौन देता है? अग्नि। जहाँ अग्नि है वहाँ उष्मा, तो इसको अग्नि को उपमा दी जा रही है कि आप चिन्मय हैं और चिन्मय स्थिति में ही सभी प्राणियों में रहते हैं, इस प्राकृत जगत में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी चिन्मय शक्ति गुणों द्वारा, प्राकृत पदार्थों द्वारा ढकी रहती है। गुणा रड़ी छन्न चिदस्म पाया तक्षोभ वीर सूर्जित मानसाय। और जो प्रकृति के गुणों में, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में क्षोभ होता है आपकी काल शक्ति द्वारा, तब आप विस्फुर्जित मानस आया, आपका मानस, आपका मन विस्फुर्जित हो जाता है। विस्फुर्जित का अर्थ है कि बाहरी ध्यान देता है, उस समय आप बहिर्वृत्ति होते हैं और सृष्टि करते हैं। गुणों में विषमता होती है तब सृष्टि चालू होती है। अनेक प्रकार के जीव, उनके विविध संस्कार आदि सब उग जाते हैं, तो आप विविध जीवों के कर्म को, कर्म फल को चालू कर देते हैं। अन्य समय में आप अंतःवृत्ति वाले रहते हैं, लेकिन गुणों में क्षोभ होने पर आपको ये संसार रचने की इच्छा होती है। विस्फुर्जित मानसाय, आपके मानस में ये इच्छा होती है कि मैं अब दुनिया बनाऊं। सृष्टि के पहले भगवान अकेले रहते हैं और वे कभी कभी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या रहूँगा, अब कुछ रचना करना चाहिए। तो रचना करने के लिए वो कोई प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, उसके गुणों में क्षोभ हो जाता है। तो भगवान प्रकृति में सारे जीवों को दे देते हैं, जैसे किसान अपने घर में रखे हुए बीज को खेत में बो देता है, इसी तरह भगवान अपनी ही माया शक्ति में जीव रूप बीज को दे देते हैं, सभी जीवों को देते हैं, और उस पर देखते हैं प्रकृति पर तो शक्तिशाली हो जाती है, और भगवान के प्रभाव से वो सभी जीवों का देह बनाती है, उनका भोग बनाते हैं, सब कुछ खाने को देती है, और इस तरह से संसार सृष्टि प्रवाह चालू हो जाता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। गुणा रणी छन्न चिदुष्म पाय तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म भावे न